खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के कलाम में से कुछ अपनी नसीहत और तरबियत और ईमान की बढ़ोतरी के लिए चंद एक बातों को सीखेंगे। और आज हम फिर देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 8 बाप। हम उसकी जो देखेंगे जी 8 बाप की 22वीं आयत से 39वीं आयत तक। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 8 बाप, उसकी 22वीं आयत से 39वीं आयत तक। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु तूफान को क्या करता है, थमा देता है। वो यीशु क्या करता है, तूफान को थमा देता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आज आपकी जिंदगी में किस किस्म का तूफान उठा हुआ है। वो बीमारी का हो सकता है, वो किसी ऐसी मुश्किल का हो सकता है जिसके बायस आज आप सोच रहे हैं कि खुदा ने मुझे मेरे हालात में छोड़ दिया है। वो हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई, फसाद, झगड़ा, कारोबार का बंद हो जाना, या फिर आप अपने बेटे और बेटी की शादी के बारे में परेशान हैं, या कोई और बीमारी ने आपके खानदान को घेरे हुए है। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है, तूफानों को थमा देता है। वो हुक्म देता है और उसके हुक्म के आगे हर एक बात पूरी होती है। तो यहाँ पर यूँ लिखा है 8 बाप उसकी 22वीं आयत में, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शिगिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया। और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरती जाती थी और वो खतरे में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इससे पहले के इस वाक्या पर गौर करें, जब हम बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह को देखते हैं, सुनते हैं और उसके कहे हुए पर अमल करते हैं तो हर खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम हर जगह पर जहां पर वो जाता है हमें 4 किस्म के लोग नज़र आते हैं। हर एक जगह पर, चाहे वो आज है चाहे आने वाली किसी और इबादत में हम शामिल हों, 4 किस्म के लोग नज़र आते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनको 4 मुख्तलिफ ज़मीनों से क्या करते हैं जी, बयान करते हैं कि उनकी शबी, उनका जो हालात है उनको इससे क्या की गई है, ये मिसाल दी गई है। जब हम देखते हैं बीज बोने वाले की मिसाल, तो बीज बोने वाला कौन है जी, इब्ने आदम। और बीज क्या है, खुदा का कलाम। और जब खुदा का कलाम बोया जाता है तो वो 4 मुख्तलिफ ज़मीनों पर गिरता है, जो 4 मुख्तलिफ दिलों की हालत बयान की गई है। पहला वो है जो राह के किनारे, जब कलाम होता है तो कलाम क्या होता है जी, राह के किनारे वाली ज़मीन पर गिरता है और वो ज़मीन फल नहीं लाती, वो पाँव के नीचे रौंदा जाता है, इब्लीस आता है और उस कलाम को चुरा कर ले जाता है। दूसरी वो ज़मीन है जो चट्टान की ज़मीन है, जब कलाम किया जाता है तो कलाम जड़ नहीं पकड़ता, इसलिए वो आर्जी और थोड़े दिनों का होता है और उसके बाद कोई भी फल पैदा नहीं होता, वो बेफल रह जाता है। और तीसरी किस्म का वो बंदा है, झाड़ियों वाली ज़मीन। ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं, कबूल करते हैं और खुशी के साथ उसे अपनाते हैं, लेकिन जब मुसीबतें, परेशानियां और दुनिया की फिक्रें आती हैं तो वो क्या करते हैं, उससे आजमाए जाते हैं, तो उस कलाम से फिर जाते हैं, क्योंकि जड़ियों के बावजूद उनके ऊपर क्या है जी, जो रोशनी नहीं डलती और वो महरूम रह जाते हैं उस नूर से। और चौथी किस्म की ज़मीन वो ज़मीन है जिसे क्या कहा गया है, अच्छी ज़मीन। आज मेरी दुआ है कि हम सब रात के किनारे वाली पथरीली ज़मीन और झाड़ियों वाली ज़मीन ना बने, बल्कि क्या कहें, खुदावंद मेरे दिल को तैयार कर ताकि वो अच्छी ज़मीन हो। आए चंद नमों के लिए खुदा के जुड़ चुकें और दुआ करें। खुदा बाप, आज हम सब के दिलों को तैयार करता, जब तू कलाम करे, जब तू कलाम का बीज बोए, तो खुदावंद खुदा हम राह के किनारे वाली ज़मीन के साथ ना मिलें। चट्टान पर गिरे हुए बीज की मानद हमारे दिलों की हालत ना हो, हम वो झाड़ियों वाली ज़मीन ना बने, बल्कि अच्छी ज़मीन जिस पे बीज बोया गया वो फला, बड़ा और 100 गुना फल लाया। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए हौसला, तसल्ली, रहनुमाई का वसीला ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। तो यीशु तूफान को क्या करता है जी, डांटता है, थमा देता है। आज इस बात पर गौर करवाना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा जैसे यहाँ पर हुआ है, यीशु अपने शागिर्दों को कहता है कि झील के पार चलें, इस झील के दूसरी तरफ चलें, और शागिर्द उसकी सुनकर चलते हैं। और झील के ऊपर जैसे ही वो जा रहे हैं, यीशु सुकून से सो गया और शागिर्द क्या है जी, तूफान का सामना करते हैं। बहुत दफ़ा हम भी इस तरह अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हमने यीशु को कबूल किया, उसके कहे के मुताबिक उसके कलाम पर अमल किया, और अब हमें तूफानों का, मुसीबतों का सामना है, हम गिरे हुए हैं। बहुत दफ़ा हम ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे हालात में क्या है, बड़े सुकून के साथ सो रहा है, और हम इन शागिर्दों की तरह क्या कहते हैं, जब कश्ती चली जाती थी वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरती जाती थी और वो खतरे में थे, उन्होंने पास आकर उसे जगाकर कहा, है साहेब हम हलाक हुए जाते हैं। हम भी बहुत दफ़ा पहली बात जो सोचते हैं कि खुदावन खुदा ने क्यों हमें इस खतरे में डाला, क्यों हम इस जगह पर हैं, क्यों हम इन हालात में हैं, क्यों खुदा ने हमें इन हालात में से गुजरने के लिए ये सारा कुछ मुमकिन होने दिया। आज आप में से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो बीमारी में हैं और वो सोच रहे होंगे कि क्यों हमारे यहाँ बीमारी है, क्यों हमारे यहाँ परेशानी है, क्यों मेरा बेटा मेरी दुआओं के बावजूद, मेरे रोज़ों के बावजूद फिर भी उसका जवाब ऐसे है नहीं मिल रहा। सोचते हैं ना जी हम इंसान होते हुए कि हम तूफानों में घिरे हुए हैं और यीशु ऐसे है जैसे कि वो सो रहा है और उसे कोई फिक्र नहीं, और हम पुकार उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। और यीशु मसीह दूसरी बात, बहुत दफ़ा हमें तूफ़ानों में से गुजरने देता है ताकि हम तूफ़ानों में इत्मीनान और तसल्ली पाएं, ताकि हम ईमान में और ज़्यादा मजबूत हों। आप सबको याद होगा कि बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनमें खुदा हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि वो खुद दूर खड़े हुए देख रहा है कि अपने लोगों को कि वो दुख उठाएँ। इसराइल की ज़िंदगी का वाक़या देखते हैं कि वो 400 साल तक फ़िरौन की ग़ुलामी में पिसते रहे, रोते रहे, चलाते रहे, और उनके लिए ऐसा है कि खुदा उनकी तरफ क्या है जी, सो रहा है। वो चलाते हैं, रोते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन खुदावन खुदा क्या कर रहा है जी, उनको इस्तेमाल कर रहा है कि मैं तुमको क्या करूँगा, अपने जलाल और अपनी गवाही का वसीला बनाऊंगा। हम एक मिसाल और देख सकते हैं, जन्म के अंधे को यूहन्ना की इंजील जब उसके 9वें बाब में देखते हैं तो वहां पर एक जन्म के अंधे का हमें जिक्र मिलता है, जो बचपन ही से पैदाइश ही से अंधा पैदा हुआ, और उसके माँ बाप जो यहूदी हैं, शागिर्दों ने यकदम ये बात कह दी खुदावंद यीशु मसीह से कि किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने। यीशु मसीह ने उनको दुरुस्त करते हुए कहा, इसने नहीं ना इसके माँ बाप ने, ये बीमारी क्या है, मेरे जलाल के लिए। हम अपनी जिंदगी के तूफानों में, मुश्किलात में, परेशानियों में, उन हालात में जिनमें हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों मुझ पर अच्छे खुदा ने ये होने दिया, और बहुत दफ़ा हम ना उम्मीद होकर दुनिया की बातों का सामना करते हुए कहते हैं, हमने क्या गुनाह किया कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो जन्म का अंधा जो बचपन से ये सोचता आ रहा होगा, जब बार बार उन यहूदियों ने, रबियों ने, जैसे शिगिर्दों ने कहा कि किसी ने गुनाह किया है जिसके पास ये बंदा क्या है जी, अंधा पैदा हुआ। और वो इस बात को सुनते हुए जवान हुआ है कि वो भी इस बात का मुतलाशी होगा, इस बात की तरफ उसका ध्यान होगा कि कौन सा गुनाह मैंने कर लिया कि मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारे शोशोपन को, जिसमें बहुत से रब्बी, बहुत से उस्ताद यीशु के अपने शिगिर्द पड़े हुए थे, उनको कहा कि ये बीमारी गुनाह के बायस नहीं बल्कि क्या है जी, मेरे जलाल का वसीला है। और यहां पर शिगिर्द भी तूफान में घिरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हम मर जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे। तो यीशु मसीह क्या करता है जी, उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। इससे पहले कि हम खुदा के अमन का, खुदा की सलामती का, खुदा के उस खूबसूरत कह सकते हैं मोहब्बत और रफाकत का तजर्बा करें, हमें ज़रूर है कि दुख में से गुजरें। वो हमारी भलाई के लिए है। मुझे नहीं पता मैंने आपको ये कहानी, ये वाकया बयान किया है कि नहीं, कि 2015 में जब हमारा एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में, हम तबलीग के लिए जा रहे थे जगह ब जगह, शहर ब शहर और मुख्तलिफ सूबों में। तो मैं गाड़ी चला रहा था 70 की स्पीड पर, और गाड़ी के बीच मेरे साथ मेरी बीवी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है, वो पानी पीने के लिए उठती है, और यकदम ड्राइवर सीट का जो साइड का टायर है वो फट जाता है, और गाड़ी ने 4-5 चक्कर खाए, 12 व्हीलर जो सेमी ट्रक है उससे टकराने से बची, पहली सड़क से दूसरी, फिर उस खड्डे में जाती है और बाहर निकलकर मकई के खेत में रुकती है। और इसी के दौरान मेरी बीवी जब छत गाड़ी की, जो हाई रूफ गाड़ी थी जिसमें बेड भी था, टीवी भी, फ्रिज भी था, वो सारी सफर वाली गाड़ी, जब उसकी छत फटी तो मेरी बीवी उस छत में से निकलकर मुझे नहीं पता कितने मील दूर गिरी। और उसने अपना तजर्बा बताया कि जब वो उस गाड़ी में से, जैसे वैक्यूम मशीन सुड़का लगाती है किसी को खींचने के लिए, उसे ऐसे इजेक्ट हुई, और जब वो हवा में थी तो उसने खुदा के फरिश्ते को, जो उसको उठाकर बड़े प्यार से जैसे बच्चे को पंगूड़े में लटा देते हैं, उसे घास पर लटा दिया, और उसकी एक भी हड्डी ना टूटी क्योंकि उसने बेल्ट नहीं लगाया था। वो गाड़ी से निकलकर बाहर घास पर गिरी और मैं गाड़ी ही में था, कलाबाजियां गाड़ी की लग रही हैं। और आखिर को जब गाड़ी रुकी तो कोई आया और उसने कहा कि तुम ठीक हो, और उसने, मैंने कहा कि मेरा अभी वक्त नहीं आया, अगर खुदा चाहता कि मैं मर जाता तो पाकिस्तान में बड़ी थी जगह थी कि वहाँ पर मैं मरता, लेकिन अभी तक मैंने पूरा अमेरिका नहीं फिरा कि जाकर खुदा की मनादी करूँ, अभी सिर्फ 32 सूबे फिरे हैं, खुदावन मेरे साथ है और अभी मेरा वक्त नहीं आया। और वो बंदा पुलिस वाला सोचने लगा कि शायद इस बंदे का दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि मेरे सर से खून बह रहा था, मेरे हाथ से खून बह रहा था, हर एक चीज़ क्या थी जी, टूटी हुई थी। तो जब उस हालात में से गुजरे तो क्या हुआ, खुदा के इत्मीनान और तसल्ली का जो तजर्बा हमने पाया वो बयान से बाहर है, जैसे ठीक यहाँ पर हुआ कि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जब हमारी गाड़ी का टायर फटा तो ऐसे हुआ, और जब गाड़ी रुकी तो उसे जब कबाड़ खाने में लेकर गए, तो अगले दिन जब हमको अस्पताल से फारग कर दिया गया टांके लगा के, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, तो उस कबाड़ खाने में जब गए तो कबाड़ खाने वाला कहता है कि इसमें जो लोग थे वो मर गए हैं, उनका क्या बना? और कैरी ने कहा कि हम ही वो लोग हैं, और उस बंदे का जो चबाड़ा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया वो हैरान हो गया, और कैरी ने उसे खुशखबरी का पैगाम देना शुरू किया कि यीशु मसीह जैसे हमारी निजात है, तुम्हारे लिए भी क्या है? निजात है। अगर आज के तुम उस पर ईमान लाओगे तो जिस्मानी तौर पर तो मर सकते हो, लेकिन रूहानी मौत पर क्या करोगे जी? अब तक जिंदा रहोगे। तो बहुत दफ़ा हमें मुश्किल हालात से गुजरना ज़रूर है ताकि हम खुदा के इत्मीनान और तसल्ली को हासिल कर सकें। एलिया की ज़िंदगी ऐसे ही नज़र आती है। इज़बल और मुआब का जो दूसरा बादशाह है वो सब उसकी मुखालफत में है, उसके इश्तहार दे दिए गए हैं कि जी एलिया जो खुदा का नबी है उसे पकड़ा जाए, उसे कत्ल किया जाए और उसे मरवा दिया जाए, और एलिया छुपता फिरता है, डर रहा है। अभी अभी बाल के पुजारियों के सामने खुदा ने एक अजब काम किया है कि आसमान से आग नाजल की, और उसके बाद फिर एलिया डरा हुआ छुपा हुआ नजर आ रहा है और घबराया हुआ है। खुदावंद खुदा उसकी तमाम घबराहट में, खौफ में, डर में, पहले आसमान गरजता है, फिर तूफानी आंधी आती है, सब कुछ होता है, आग का बगुला, सब कुछ वहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बड़ी धीमी आवाज में खुदा का रूह उससे कलाम करता है। इससे पहले कि हम खुदा की रफाकत का, इत्मीनान का, तसल्ली का तजर्बा करें, हमें बेइत्मीनानी का सामना करना ज़रूर है, जैसे यहाँ पर शिगिर्दों ने किया। और तब जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ 2015, तब मैं 32 सूबों में फिरा था, अब गालबन 41 सूबों में अमेरिका में खिदमत का मौका कर चुका हूँ खुदावन के फजल से, और अभी 9 सूबे बाकी हैं। सो वो हमें इत्मीनान और तसल्ली देगा, और उसके साथ साथ वो हमसे सवाल करेगा कि तुम्हारा ईमान कहाँ पर जाता रहा। हम सब का ईमान कमज़ोर होगा, इसलिए जब जब हम ईमान कमज़ोर महसूस करें, उस कमज़ोर ईमान को वो मजबूत करने के लिए मौजूद है। और अगली आखिरी बात हम कभी ना भूलें, क्योंकि उसे तूफानों पर, मौत पर, ज़िंदगी पर, हर तरह के हालात पर क्या है जी? इख्तियार है। और यहाँ पर क्या लिखा है? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? शागिर्द काफ़ी अरसा यीशु मसीह के साथ गुजार चुके हैं, बहुत से मौजज़ा दे चुके हैं। जब हम इसी किताब के लूका की इंजील के पहले 5 बाब पढ़ते हैं तो क्या हुआ है? यीशु मसीह बियाबान से आया है, यीशु मसीह अजीब अजीब काम कर रहा है शहरों में, गांव में, सिनागॉग जिसे गलीलियों के आबादखाना में, हैकल में जाकर अजीब अजीब मौजज़े किए। यायर की बेटी को उसने शिफा दी, 12 बरस से बीमार औरत को उसने शिफा दी, 9 के रहने वाली उस बेवा के बेटे को उसने जिंदा किया, और उससे पीछे और बड़े अजीब काम, और अभी तक वो इस शोशोपन में है कि ये कौन है। हम यीशु मसीह को पूरे तौर पर तब जानेंगे जब रूबरू होंगे, यहाँ पर हमें सारी ज़िंदगी उसके साथ रफाकत रखनी है। हमारी मसीही ज़िंदगी बहुत दफ़ा से मिसाल दे सकते हैं, ज़मीनी शादीशुदा ज़िंदगी में खामंद और बीवी दिन ब दिन, माँ बा माँ, साल बा साल और हर साल एक दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं और एक दूसरे को जानते पहचानते हैं कि मेरे खामंद नू ऐ पसंद आ मैनू ते पता ही नहीं सी, मेरी बीवी दी ऐ पसंदीदा चीज़ आ मैनू पता ही नहीं सी, मैं ते क्या सी कि गुलाबी रंग आ, लेकिन उसे और भी पसंद है। हम भी बहुत दफ़ा हैरान होंगे कि कौन है जो हवा और पानी को क्या देता है जी? हुक्म देता है। ये कौन है? इसके बारे में मिसाल की किताब में 5 बड़े ही ज़बरदस्त सवाल किए गए हैं, इस पर हम ख़त्म करेंगे। इमसाल की किताब उसका 30 बाब, पुराने नामा में इमसाल की किताब, खुदावन का बंदा सुलेमान बादशाह क्या कहता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त हिस्सा है जो हम सबको और हर एक के लिए है कि वो इस सवाल को करे। इम्साल उसका 30 बाप उसकी 4:4 आयत को देखते हैं तो पहला सवाल है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? आपसे ये सवाल है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? यीशु मसीह। किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? उसने हवा और पानी को हुक्म दिया और वो दोनों थम गए और अमन हो गया। किसने पानी को चादर में बांधा? खुदावंद यीशु मसीह। वो तूफानों को कहता है वो थम जाते हैं और वो पानियों पर चलता है तो डूबता नहीं, और वो डूबते हुए को क्या करता है? फिर पानी पर चला देता है। किसने जमीन की हद ठहराई? यीशु मसीह ने। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई, और उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और आगे पांचवा सवाल क्या है? अगर तू जानता है तो बता उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। उसके बेटे का क्या नाम है? यीशु मसीह, नासरत का रहने वाला और इसराइल अमीर और मसीहियों के लिए उनकी तूफानी जिंदगी में। अबरानियों का मुसन्निफ कहता है हमारे तूफान से भरी हुई जिंदगी में वो क्या है? हमारी निजात का अमीर का क्या है जी? लंगर है। लंगर किसे कहते हैं? बड़े बड़े बेड़ों को रोकने के लिए, संभालने के लिए, तूफानों का सामना करने के लिए। जब वो रात को रुकते हैं तो तीन एक कुंडा नुमा जैसा होता है जो पानी के नीचे जाता है, बड़ा भारी होता है, जो उस जहाज को थामे रहता है, उस बेड़े को थामे रहता है। हमारी जिंदगी को थामने का लंगर कौन है जी? यीशु मसीह। तो इसलिए अगर आज आप बुरे वक्त में से गुजर रहे हैं तो इसमें खुदावंद का शुक्र करें, क्योंकि वो हमारे ईमान को बढ़ाएगा। खुदा का शुक्र करें अय्यूब की तरह के वो गीत गा कर कहता है कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। वो गीत गाते हुए कहता है कि मैं नंगा ही अपनी माँ के पेट में से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा, उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम क्या हो जी? इसे सिर्फ हम फौतगी पर ही नहीं बल्कि हर रोज अपनी जिंदगी में कह सकते हैं कि खुदावन सब कुछ मेरा है। अगर मैं तूफान में से गुजर रही हूँ तो मेरी जान का लंगर बन, अगर मैं मुसीबत का सामना कर रही हूँ तो मेरी छुपने की चट्टान बन, अगर मेरा ईमान कमजोर है तो मेरे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर, अगर खुदावन खुदा मैं परेशान हूँ तो मेरी परेशानी में मेरा इत्मीनान और वो हमारे लिए हर एक चीज़ बन जाएगा जब हम उसे पुकारेंगे। हम हलाक हुए जाते हैं, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, तो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं। उसका नाम क्या है जो पानियों को थमा देता है? उसका नाम क्या है जो जिंदगी को बदल देता है? उसका नाम क्या है जिसने ज़मीन की बुनियाद डाली? उसका नाम क्या है जो आप और मेरी जान का लंगर है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और खुदा का शुक्र करें कि बहुत दफा जैसे हम सोचते हैं कि वो सोया हुआ है, उसने हमारी दुआ पर कान नहीं लगाया, वो हमारा रोना नहीं देख सकता, वो हमारी परेशानी पर अपनी तवज्जो नहीं डाल रहा। बाइबल मुकद्दस कहती है अखियां चुकना हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर ना आवे, इसराइलां दियां रखदा ओ ताड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। देख इसराइल का खुदा ना ऊंघता है, ना सोता है, ना थकता है, बल्कि खुदावन खुदा कहता है वो तुझे अपने साहिबान में छिपा लेगा, वो अपने परों के नीचे तुझे पना देगा, तू अंदर जाते बाहर आते और तेरी आमद और रफ्त में वो कहता है मैं तेरा हम सफर बनूंगा, मैं तेरी चट्टान बनूंगा। कादरे मुतले खुदा आज यीशु के नाम में इस कलाम के वसीला से हमारी तमाम मुसीबतों में, परेशानियों में, मुश्किलात में खुदावंद तू तमाम तूफानों को थमा दे, تو جھڑک ان بیماریوں کو، ان مشکلات کو، یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہللویا، خداوند کی باقی تعریف کرتے ہوئے بھائی کے ساتھ جو بھی میٹنگ کا اگلا حصہ ہے وہ جاری رکھیں۔